नमस्कार भारत, 18 जनवरी दिन बृहस्पतिवार, सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। शीतकालीन ओलंपिक में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया मैदान में होंगे एक झंडे तले।
It's over a very positive context. I think we will have to, of course, manage every aspect of this very carefully.
क्या अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप नस्ली भावनाओं को उभारने का काम कर रहे हैं?
अमेरिका में जो कम पढ़े लिखे व्हाइट लोग हैं, वो बाकायदा डर गए हैं कि उनके हाथ से मुल्क निकल जा रहा है।
होंगे खेल समाचार और समाचार पत्रों की सुर्खियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वो उत्तर कोरिया के साथ संभल कर कदम बढ़ाएगा। दक्षिण कोरिया की विदेश मंत्री गेंग युंग हुआ ने कहा है कि भले ही दोनों देश शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन मौके पर एक ही ध्वज तले मार्च करने पर राजी हो गए हैं, लेकिन उनका देश उत्तर कोरिया के साथ संभल कर आगे बढ़ेगा, वो भी खुली आंखों से। बीबीसी के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस सहमति के बावजूद वो परमाणु कार्यक्रम को लेकर उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ हैं। अमेरिका ने कहा है कि सीरिया में कथित इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जीत हासिल करने के बावजूद उसकी सेनाएं वहां बनी रहेंगी। विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने सीरिया नीति पर बात करते हुए ये बयान दिया। उन्होंने कहा,
Our diplomatic efforts will be characterized by stabilization initiatives.
हमारे कूटनीतिक प्रयास स्थिरता के कदमों के रूप में दिखेंगे और कोशिश होगी कि सीरियाई संघर्ष का राजनीतिक समाधान निकाला जाए, लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि सीरिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी बनी रहेगी ताकि वहां फिर से इस्लामिक स्टेट अपनी जड़ें न जमा सके। ये थे अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इथोपिया में 100 से अधिक कैदियों को रिहा कर दिया गया है। इनमें प्रमुख विपक्षी नेता मेरेरा गुडीना भी शामिल हैं। इथोपिया की सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि जल्द ही 500 राजनेताओं को जेलों में रिहा किया जाएगा। रिहा होने के बाद मेरेरा गुडीना ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हम शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से अपने लोगों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हम सरकार से और भी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग करते हैं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। मैं खुश हूं कि आज रिहा हो गया हूं। मुझे आज इतना ही कहना था, लेकिन कल से हम अपने काम पर जुट जाएंगे। ये थे इथोपिया के विपक्षी नेता मेरेरा गुडीना के शब्द। नीदरलैंड्स में इरिट्रिया के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। ये फैसला डच रेडियो पर प्रसारित उस डॉक्यूमेंट्री के बाद आया है जिसमें बताया गया था कि इरिट्रिया के शरणार्थी नीदरलैंड्स की दूतावास की सेवाएं लेने के लिए प्रवासी टैक्स चुका रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने कहा है कि वो अमेरिका के बाहर जुटाई गई 250 अरब डॉलर की नकदी पर 2,40,000 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स चुकाएगी। अमरीका में हाल ही में किए गए सुधारों के तहत चुकाई जाने वाली ये रकम सबसे बड़ी है। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के मसले पर चीन समेत अमेरिका के सभी सहयोगी देश अभी जितने एकजुट हैं उतने पहले कभी नहीं थे। उन्होंने कहा कि चीन पहले उत्तर कोरिया पर नरम रवैया अख्तियार करता रहा था। समाचार एजेंसी पीटीआई ने खबर दी है कि जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी की है। इस गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल के एक जवान की मौत हो गई है। तुर्की में आपातकाल की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। जुलाई 2016 में नाकाम तख्तापलट के बाद छठी बार समय सीमा बढ़ाने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। अगले महीने यानी फरवरी में दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे शीतकालीन ओलंपिक खेलों में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक ही ध्वज के नीचे मार्च करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके अलावा दोनों देश आइस हॉकी की महिला टीम भी संयुक्त रूप से बनाने पर राजी हुए हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया की विदेश मंत्री ने बीबीसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे से निपटने के लिए जो बातें पहले कही जा चुकी हैं और जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो अपनी जगह बने रहेंगे। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिनेश उप्रेती से।
दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया के साथ शीतकालीन ओलंपिक खेलों में जुगलबंदी का ये मतलब कतई नहीं है कि पड़ोसी देश के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसके रवैये में कुछ बदलाव हुआ है। दक्षिण कोरिया की विदेश मंत्री गेंग ग्यूंग हुआ ने बीबीसी से खास बातचीत में कहा कि भले ही दोनों देशों के खिलाड़ी एक ही झंडे के नीचे मार्च पास्ट करेंगे, लेकिन जहां तक परमाणु हथियारों को लेकर उत्तर कोरिया पर जारी प्रतिबंधों की बात है, उनका देश पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ है। हालांकि उन्होंने माना कि ये बड़ी और अच्छी पहल है और इस पर बेहद सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए।
It's over a very positive context. I think we will have to, of course, manage every aspect of this very carefully. But
कुल मिलाकर ये बहुत ही सकारात्मक पहल है। मैं समझती हूँ कि हमें हर पहलू को गौर से देखना और समझना चाहिए। ये न केवल खेलों के लिए बल्कि दक्षिण कोरिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी अच्छा है। तकरीबन दो सालों तक इन दो पड़ोसियों के बीच बातचीत बंद थी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अमरीका और पड़ोसियों की तमाम चेतावनियों को दरकिनार करते हुए एक के बाद एक मिसाइलें दागते रहे। हर परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों की नकेल और कसी, लेकिन पूरे इलाके में तनाव कम होने के बजाय बढ़ता गया। लेकिन अब कुछ आस बनती दिख रही है। कोरियाई प्रायद्वीप में शांति लाने की बेकरारी दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री में भी दिख रही है। शायद यही वजह है कि पेट्रोल डीजल समेत खाने पीने के सामानों की कमी से जूझ रहे अपने पड़ोसी के लिए उनका दिल कुछ पिघल भी रहा है।
My government is very clear that despite the difficulty of the situation, the humanitarian assistance.
गेंग युंग कह रही थीं कि उनकी सरकार का स्पष्ट मत है कि हालात की गंभीरता के बावजूद उत्तर कोरिया को मानवीय सहायता जारी रहनी चाहिए। उत्तर कोरिया की समस्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय थक सा गया है। संयुक्त राष्ट्र को सीधे उत्तर कोरिया के लोगों की मदद करनी चाहिए। दूसरी ओर अमेरिका को भी उम्मीद है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर अब उत्तर कोरिया बातचीत की मेज पर लौटेगा।
Look, we see this as an opportunity for the regime to see the value of ending its international isolation by denuclearization.
White House की प्रवक्ता सारा सैंडर्स कह रही थीं कि वो इसे दुनिया से अलग थलग पड़े उत्तर कोरिया के लिए बातचीत की तरफ बढ़ने के अवसर के रूप में देख रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के खिलाड़ी पहली बार एक साथ मार्च करेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा अनुभव उत्तर कोरिया और उसके खिलाड़ियों को आज़ादी का एहसास दिलाएगा। उत्तर कोरिया अगले महीने होने वाले शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए 550 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगा। हालांकि इसमें खिलाड़ी तो कम ही होंगे और संगीतकार, चीयर लीडर्स और अधिकारियों की फौज अधिक होगी। फिर भी खेल के बहाने ही सही, उत्तर कोरिया के इस कदम से शक और संदेह की दीवारें कुछ तो कमजोर होंगी।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती। कुछ महीने पहले तक उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव चरम पर था। क्या मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच तनाव अब थोड़ा ही सही कुछ कम हो गया है? हमारे सहयोगी आदर्श राठौड़ ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक से बात की और इस घटनाक्रम के मायने समझने चाहे।
दोनों की तरफ से, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की तरफ से, एक ये रेयर अपॉर्चुनिटी मिल गई विंटर ओलंपिक्स की कि अगर दोनों के दोनों चाहते हैं कि कोरियन आम जनता को वो लीड करना चाहते हैं और दोनों ही कहते हैं कि हम कोरिया के और कोरियन हेरिटेज के वंशज हैं, तो इससे अच्छा मौका उनके लिए नहीं हो सकता था। और मेरे ख्याल से अच्छी बात ये रही है कि दोनों तरफ से इस समय दबाव भी ऐसा पड़ रहा था, अमेरिका का, चीन का, रूस का, कि भाई सब कोरिया वाले जो है अपना हल निकालने का प्रयास करें ताकि जो परमाणु युद्ध की तरफ बात चल रही थी वो रुक सके। तो हमारे ख्याल से बहुत अच्छा ये ओकेजन था और ये इसको जो है उन्होंने आपस में मिलकर इस तरीके से करा है। तो हम सोचते हैं कि ज्वाइंट अगर टीम बनती है इनकी, और एक मैंने सुना है कि 140 विमेन का ऑर्केस्ट्रा आने वाला है उत्तर कोरिया से, तो उसका अगर वो 2-3 शहरों में जाएगा तो बहुत अच्छे में खासे उसके एटमोस्फेरिक्स तो बहुत अच्छी हो जाएगी। उत्तर कोरिया ने कहा है कि वह अमेरिका से ही बात करेगा इस बारे में, तो वो ठीक है, बात कर लें आपस में। तो ये एक तरीके से ये माहौल बनेगा अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच में बात करने का, और इसमें जो और देश मिले हुए हैं इसमें, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे और देश हो, वो मेरे ख्याल से मदद करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी।
सर, जिस तरह से एकीकरण की बात होती रहती है दोनों देशों को लेकर कि हम एक हो जाए, क्या कितना व्यावहारिक लगता है ये, और ये कोशिशें मतलब क्या एक झंडे के नीचे आने से लगता है कि उस तरफ कोई रास्ता खुलता है?
और गेम्स में भी ये लोग रहे हैं कभी कभी एक साथ ही एक ही झंडे के नीचे, पीस फ्लैग के नीचे, लेकिन अब जिस तरह से माहौल बन गया था दोनों तरफ से, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया इससे अपने ऊंचे से ऊंचे झंडे लगा रहे थे पानमुनजोम में, जो इनका बॉर्डर विलेज है, दिखाने के लिए कि उन्होंने बहुत ज्यादा अचीवमेंट किया है, दूसरी साइड ने नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से अब ये बात इस तरह से है कि जनता के स्तर पर तो दोस्ती हो सकती है, लेकिन उससे आगे जो स्टेट के स्ट्रक्चर्स हैं, और एक ने जैसे परमाणु क्षमता प्राप्त की है, मिसाइल क्षमता प्राप्त करी है, उससे सारे पड़ोसी देश भयभीत हैं, और वो खुद इस तरह से कहते रहे हैं कि अमेरिका को और जापान को और जगहों से, और जापान के ऊपर से तो उनके मिसाइल जा भी चुके हैं, तो उसे पीछे हटना होगा। मेरे ख्याल से जिस तरीके से ईरान के परमाणु क्षमता के बारे में एग्रीमेंट हुआ था, अगर किसी तरीके से उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता के लिए भी किसी तरह का इंतजाम हो सके, तो मेरे ख्याल से वो बात जो है दोनों कोरियाओं को साथ में ला सकती है। लेकिन जो हम कहते हैं कि दोनों कोरियाओं को मिलाया जाएगा, वो मेरे ख्याल से दोनों ही कोरियाओं को बुरा लगता है, और उत्तर कोरिया सोचता है कि उसके रेजिम चेंज की बात हो रही है, यानी कि वहां की सरकार को हटाया जाना है, तो इसलिए वो उसको नहीं मानते हैं। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे अगर पीपल टू पीपल कोऑपरेशन बढ़े और फिर शांति की तरफ हम बात करें, तो एक किस तरह शांति ट्रीटी अगर इनका हो जाती है, संधि हो जाती है, तो मेरे ख्याल से वातावरण बन सकता है ये इस तरीके से आगे परमाणु युद्ध को टालने के लिए, खत्म करने के लिए।
ये थे भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक, जो शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बहाने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच हुए संवाद में संभावनाएं देख रहे हैं।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड, यानी 5875, 7430, 7565, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। चलिए एक नज़र दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियों पर, लेकिन इशारा मिल रहा है कि दिल्ली एनसीआर में कोहरा और सर्दी का असर तुषार अखबारों को भी लग गया है, आने में अखबार थोड़े लेट हो गए हैं। हम लौटेंगे अखबारों पर, समाचार पत्रों की चर्चा करेंगे, सुर्खियों की चर्चा करेंगे विस्तार से। फिलहाल बढ़ रहे हैं दुनिया जहान की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद अक्सर विवादों में रहे डोनाल्ड ट्रंप पर अब नस्ल भेदी टिप्पणी करने का आरोप लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले ही हफ्ते अफ्रीकी देशों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे बाद में उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था, राष्ट्रपति बनने से पहले भी ट्रंप पर नस्ली बयान देने के आरोप लगते रहे हैं। क्या राष्ट्रपति ट्रंप के बयान अमेरिका में नस्लवादी भावनाओं को उभारने का काम कर रहे हैं? दुनिया जहान में आदर्श राठौड़ आज इसी की पड़ताल कर रहे हैं।
दुनिया जहां।
आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का वो ऐतिहासिक भाषण है जो उन्होंने 28 अगस्त 1963 को अफ्रीकी अमरीकियों के नागरिक अधिकारों के लिए चलाए गए आंदोलन के दौरान वॉशिंगटन में दिया था। इस भाषण में उन्होंने कहा था कि वो ऐसे अमरीका का सपना देखते हैं जिसमें नस्ल भेद के लिए कोई जगह न हो। अफ्रीकी अमरीकियों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए अहिंसक आंदोलन चलाने वाली इस शख्सियत के जन्मदिन पर अमरीका में हर साल 15 जनवरी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे मनाया जाता है, मगर इस साल इस अहम दिन से कुछ ही दिन पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नस्लभेदी टिप्पणियां करने के आरोप में घिर गए। उन्हें सफाई देकर कहना पड़ा कि मैं नस्लभेदी नहीं हूं, मगर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरी दुनिया में चर्चा है कि जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका में नस्लभेदी भावनाओं में उबाल देखने को मिल रहा है। लोगों के बीच दरार क्या वाकई बढ़ रही है? अमेरिका के जमीनी हालात के बारे में डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं,
पुलिस की जो फायरिंग में सबसे ज्यादा परसेंटेज अफ्रीकन अमेरिकन मरते हैं, और कोर्ट केसेस में भी साफ जाहिर होता है कि जब छोटे बच्चे यानी 12-13 साल का कोई अगर काला बच्चा क्राइम करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती है, लेकिन अगर व्हाइट कोई बड़ा क्राइम करता है तो पहले दूसरे बार तो उनको माफी दे दी जाए। तो इस तरह से अमेरिका में कल्चरली, इकोनॉमिकली और स्ट्रक्चरली रेसिज्म है। जो एशियंस आए हुए हैं जैसा चाइना से, इंडिया से, दूसरे मुल्कों से, उनके खिलाफ उतना ज्यादा रेसिज्म नहीं है। तो इस तरह से अमेरिका में जब कोई कौम इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हो जाती है तो वो वाइट बन जाती है।
अमेरिका में नस्लवाद की शुरुआत होती है औपनिवेशिक दौर से, फिर लगातार संविधान में संशोधन हुए और धीरे धीरे अफ्रीकी अमरीकियों को उनके अधिकार दिए गए, मगर संविधान के प्रावधानों की लगातार अनदेखी होती रही। मगर इसके साथ ही अफ्रीकी अमरीकियों का संघर्ष भी जारी रहा। में नागरिक अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन तेज हुआ। भेदभाव के खिलाफ समाज के कई हिस्सों के लोग आगे आए। अमेरिका के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले कैसियस क्ले धर्म और नाम बदलकर मोहम्मद अली हो गए। ये आंदोलन सिविल राइट्स एक्ट 1968 बनने तक जारी रहा, जिसमें नस्ल, रंग, धर्म, लिंग और मूल राष्ट्र के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी करार दे दिया गया। इसके 40 साल बाद 2008 में जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने, तब उम्मीद की जाने लगी थी कि अब नस्लवाद शायद खत्म हो जाएगा, मगर क्या ऐसा हो पाया? वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा कहते हैं,
ओबामा राष्ट्रपति हुए उस समय भी लगा था कि कम से कम ब्लैक्स के साथ कुछ न्याय हो सकेगा, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप के आने के बाद तो हालात और भी खराब हो गए।
प्रोफेसर मुक्तदर खान मानते हैं कि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उससे अमेरिका में गोरे लोगों का वर्चस्व चाहने वालों को ये डर सताने लगा था कि अमेरिका अब उनके हाथ से निकल जाएगा।
ओबामा के वक्त द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल भी अमेरिका के ब्लैक थे, फिर कोलिन पावल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए, वो भी ब्लैक थे, कॉन्डोलिजा राइस ब्लैक थे। तो उससे क्या हो गया है, इन अमेरिका में जो कम पढ़े लिखे अफ्रीका वाइट लोग है वो बाकायदा डर गए हैं कि उनके हाथ से मुल्क निकल जा रहा है, वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है।
वॉइस ऑफ अमेरिका को पुलिस से मिले आंकड़े कहते हैं कि 2017 में लगातार तीसरे साल अमेरिका के बड़े शहरों में यहूदियों, मुसलमानों, काले लोगों और एलजीबीटी समुदाय के लोगों पर हमले बढ़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान की वजह से नस्लभेदी भावनाएं बढ़ी, या फिर इन भावनाओं के बढ़ने के कारण ही ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में जीत हुई है। प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं कि इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं है।
उनकी कैंपेन के दौरान उन्होंने शुरू ही में जो उनकी जो पहली बड़ी तकरीर हुई थी, मिलियन हिस्पैनिक्स हैं यानी जो स्पैनिश जबान बोलते हैं, तो उन सबको उन्होंने रेसिस्ट, क्रिमिनल और रेपिस्ट قرار دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ مسلمانوں کو سب کو امریکہ سے بین کر دیا جائے. پریسیڈنٹ بننے کے باوجود بھی پولیس بروٹیلیٹی کے خلاف جب افریقن امریکن فٹ بال پلیئرز پروٹیسٹ کرنے لگے تو پھر انہوں نے ان کو باقاعدہ بہت ہی گندی سی گالی کا استعمال کیا. ان کے الیکشن کے بعد جو پہلا ہیٹ کرائم ہوا, یعنی وائٹ سپریمیسس نے جو پہلا کرائم کیا, وہ ایک انڈین کمپیوٹر سائنٹسٹ کو مارا. اور اس کے 6 ہفتے تک بار بار انڈین لابی اور دوسرے میڈیا وغیرہ بولنے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ریسس کو کنڈیم نہیں کیا.
پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ نفرت بھرے اپرادھوں اور حرکتوں پر ٹرمپ کا خاموش رہنا کہیں نسلوادی وچاردھارا رکھنے والوں کو اکسا تو نہیں رہا؟ اس بارے میں ورشٹھ پترکار آنند سوروپ ورما کہتے ہیں,
اپنے دیش کو ہی دیکھ لیجیے, بھارت کو. یہاں بھی سمویدھان میں سب کو برابری کا درجہ پراپت ہے, لیکن یہ ریسزم, بھید بھاؤ, جاتی واد, رنگ بھید, نسل واد, یہ سب اتنے ڈیپ روٹیڈ ہیں ہماری سائیکی میں, یہ ڈی این اے میں چلے گئے ہیں, اور بڑی کوشش کر کے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جیسے ہی اس کے لیے جلوایو بڑھیا ملتی ہے, یعنی ستا جو ہے جب اس کے لیے آب و ہوا مہیا کراتی ہے, تو وہ چیزیں پھر ابھر آتی ہیں. وہی استھتی آج امریکہ میں بھی ہو رہی ہے.
لیکن امریکہ میں ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ پروفیسر مقتدر خان کہتے ہیں کہ ٹرمپ پرشاسن میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا سمبندھ وائٹ نیشنلزم سے ہے.
ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے ایڈمنسٹریشن میں سٹیون میلر جو ابھی بھی ہیں اور سٹیو بینن جو ابھی تک تھے, یہ تو ان کا تعلق تو وائٹ نیشنلزم سے بہت کلیئر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ میں جو ریشل کمپوزیشن کہیے وہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 2050 تک جو وائٹ کمیونٹی ہے وہ بالکل مائنورٹی میں آ جائیں گی. اب وہ صرف 60% وائٹ ہے امریکہ. تو اس سے جو وائٹ کمیونٹی ہے, بعض لوگ ڈر رہے ہیں کہ ان کا جو پریولیج ہے, ان کی جو پاور ہے, اکنامک سٹیٹس ہے, وہ ختم ہو جائے گا.
ایسے میں بھوشیہ کیا ہے؟ کہیں امریکہ میں نسل بھیدی وچاردھارا بڑھے گی تو نہیں؟ پروفیسر مقتدر خان کہتے ہیں,
دیکھیے امریکہ آئندہ 10-15 سال میں is going to face an identity crisis. کہ یہ ملک totally the first genuine multicultural national state بن جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو سب سے elite قوم ہوگی اس ملک کی وہ وائٹ نہیں ہوگی. لیکن یہ امریکہ ایز اے کنٹری کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ جو انوویشن, اکنامک کریٹیویٹی وغیرہ جو امیگرینٹس لے کر آ رہے ہیں, اس کے وجہ سے امریکہ ول کنٹینیو ٹو ریمین مطلب بہت ہی وائبرنٹ اکانومی. اب یہ دیکھنا ہے کہ امریکن ڈیموکریسی کس حد تک یہ چیلنج کو برداشت کر سکتی ہے.
امریکہ میں اگر لمبے سمے سے نسل بھید رہا ہے تو اس کے خلاف لڑائی کا بھی لمبا اتہاس ہے. ورشٹھ پترکار آنند سوروپ ورما کہتے ہیں,
ریسزم کے خلاف جو لڑائی لڑی تھی اس کی وجہ سے ایک مانسکتا تو بنی ہے لوگوں کے اندر ریسزم کے خلاف. یہی وجہ ہے کہ ان کو ٹرمپ کو بیک فٹ پر جانا پڑا ہے کچھ حد تک. جن لوگوں کے اندر ریسزم ہے وہ بھی یہ نہیں کہنا چاہیں گے کہ ہم ریسسٹ ہیں. تو یہ اس لڑائی کا ہی نتیجہ ہے جس لڑائی کا بھی ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں.
نسلواد یعنی اپنی نسل یا جاتی کو دوسری سے بہتر سمجھنا, یہی سوچ پورگرہوں اور بھید بھاو کو جنم دیتی ہے. انسان انسان کے بیچ فرق پیدا کرنے والی اس سوچ کی آروپ آج امریکی راشٹرپتی پر لگ رہے ہیں, مگر اصل میں یہ سوچ پوری دنیا میں الگ الگ روپوں میں موجود ہے, اور اسے ختم کرنے کے لیے ابھی بہت پریاس کرنے ہوں گے.
آدرش راٹھوڑ کی پرستتی دنیا جہان آپ کو کیسی لگی ہمیں اوگت کرائیے گا, چٹھی لکھیے گا. اور اب کھیل سماچار. اس سے پہلے سماچار پتروں کی سرخیاں جان لیتے ہیں. دنیش اپریتی اخباروں کے ساتھ اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں.
جی سندیپ جی, اکنامک ٹائمز میں چھپی ایک خبر کے مطابق سیٹلائٹ تصویروں کے حوالے سے جاری ایک رپورٹ کے انوسار چین ڈوکلام چھیتر میں کے اتری حصے میں 7 ہیلی پیڈ بنا چکا ہے. ہتھیاروں سے لیس واہن بھی اس نے اس چھیتر میں تعینات کر رکھے ہیں.
کس اخبار میں ہے یہ خبر؟
اکنامک ٹائمز میں یہ خبر ہے. اور خبر کے مطابق سینکوں کی موجودگی سے کچھ دور پر بھاری ماترا میں سڑک بنانے والی سامگری بھی رکھی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال 16 جون کو ڈوکلام میں
بالکل 70 دنوں تک گتی رودھ بنا رہا تھا بھارت اور چین کے بیچ.
ہاں, لگ بھگ 73 دنوں تک یہ وواد چلا تھا. इस बीच भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारतीय सैनिक भी उसी इलाके में मौजूद हैं और अगर चीनी सैनिक आए तो हम उनका सामना करेंगे। फिल्म पद्मावती, जो कि अब पद्मावत हो चुकी है, फिल्म पद्मावत पर कुछ राज्यों में बैन के खिलाफ इस फिल्म के निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज इस याचिका पर सुनवाई कर सकती है। चार राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा ने इस फिल्म पर बैन लगाया।
वैसे ये बड़ी हैरान करने वाली बात नहीं लगती कि जिसे सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दे दी, जिसकी अथॉरिटी है कि फिल्मों को पास करना या नहीं करना
जी,
उसके बावजूद राज्य, कुछ राज्य जो आप बता रहे हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वो अपने यहाँ दिखाने से मना कर रहे हैं।
हाँ, साफ साफ देखा जा सकता है कि कुछ इसमें सियासत है, क्योंकि जो बैन करने वाले राज्य हैं वो चारों भाजपा शासित राज्य भी हैं। भारत और इसराइल के बीच मिसाइल सौदे की खबर को कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। स्टेट्समैन की सुर्खी है, इंडिया टू बाय इसराइल स्पाइक मिसाइल, सेंसेक्स पहली बार 35,000 के पार। दैनिक भास्कर ने शेयर बाजार में उछाल की इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर के मुताबिक बाजार में ये उछाल सरकार की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि सरकार बाजार से अब 50,000 करोड़ की जगह सिर्फ 20,000 करोड़ रुपये उधार लेगी। अच्छा संदीप जी, आजकल ऑफिसों में इनकम टैक्स डिक्लेरेशन का माहौल बन रहा है, आपने भी कुछ निवेश तो किया ही होगा, क्या आपने नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश किया है?
अभी तक नहीं।
तो कोई बात नहीं, तो जिन्होंने एनपीएस में निवेश किया है उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो अब अपने एनपीएस खाते से 1/4 रकम निकाल सकेंगे।
और पहले क्या दिक्कत थी, पहले नहीं,
पहले 3 साल बाद जो है वो नहीं निकल सकती थी, अब ये कर दिया गया है कि 1/4 रकम आप निकाल सकते हैं इस अवधि के बाद। ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ के सिपाही के एएसआई को गोली मारने की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर छापा है। लखनऊ से एक झकझोर देने वाली खबर है, दैनिक जागरण के मुताबिक लखनऊ के एक स्कूल में कक्षा 1 के एक छात्र की हत्या की कोशिश की गई। एसएसपी दीपक कुमार ने बताया कि आरोपी 11 वर्षीय छात्रा है और 7वीं में पढ़ती है। वजह जानना चाहेंगे?
जल्दी से बताइए।
स्कूल में छुट्टी कराने को लेकर छात्रा ने इस मासूम पर हमला किया।
बहुत शुक्रिया दिनेश उप्रेती, बता रहे थे दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या कुछ छपा है आज। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां न्यूजीलैंड में शुरू हुए 4 नेशन इन्विटेशनल टूर्नामेंट में भारत ने बढ़िया आगाज किया है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड के टोरंगा में बुधवार यानी कल जापान को 6-0 से मात देकर विजय का आगाज किया। भारत की इस जीत में सबसे बड़ा योगदान रहा अपना पहला ही इंटरनेशनल मैच खेल रहे विवेक सिंह प्रसाद और दिलप्रीत सिंह का। 4 नेशन इन्विटेशनल टूर्नामेंट में भारत, जापान, न्यूजीलैंड और बेल्जियम की टीम खेल रही है। भारतीय टीम का सामना 18 जनवरी को बेल्जियम से होगा। और अब आपको लेकर चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां कल भारत पर साउथ अफ्रीका ने जीत तो हासिल करी, लेकिन उस मुकाबले के बाद आईसीसी ने साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका दिया है। आईसीसी ने साउथ अफ्रीका पर भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जीत के दौरान धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया है, क्योंकि फाफ डू प्लेसिस की अगुवाई वाली टीम ने निर्धारित समय में 2 ओवर कम फेंके हैं। खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के नियम के अनुसार टीम के निर्धारित समय में प्रत्येक कम ओवर फेंकने के लिए खिलाड़ी पर मैच फीस का 10%, जबकि कप्तान पर 2x जुर्माना लगाया है। इस तरह से फाफ डू प्लेसिस पर मैच फीस का 40%, जबकि खिलाड़ियों पर 20% जुर्माना लगा है। यूएई में खेले जा रहे ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप से भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत और बांग्लादेश का ये मुकाबला 17 जनवरी यानी कल खेला गया था, और अब भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल का मुकाबला खेला जाना है और ये मुकाबला 20 जनवरी को खेला जाएगा। तो वहीं टेनिस में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज मेन सिंगल्स के दूसरे राउंड में नोवाक जोकोविच फ्रांस के खिलाड़ी गेल मोफिल्स के साथ मुकाबला करेंगे, तो वहीं वेमेन सिंगल्स के दूसरे राउंड के मुकाबले में मारिया शारापोवा का सामना होगा लातविया की खिलाड़ी एनेस्टीसा सेवेस्तोवा के साथ।
चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वो उत्तर कोरिया के साथ संभल कर कदम बढ़ाएगा। अमेरिका ने कहा है कि सीरिया में कथित इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जीत हासिल करने के बावजूद उसकी सेनाएं वहां बनी रहेंगी। इथोपिया में 100 से अधिक कैदियों को रिहा कर दिया गया है। इनमें प्रमुख विपक्षी नेता मेरेरा गुडिना भी शामिल हैं। नीदरलैंड्स में इरिट्रिया के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे दिनेश उप्रेती और इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। गुरप्रीत कौर फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचा रही थी। नमस्कार भारत में आज इतना ही। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे संदीप सोनी के साथ। पूरी टीम को दीजिए इजाजत।